दोस्तों, आप सुन रहे हैं कोको एफएम, सुने जो मन चाहे। मोनिका की आवाज में स्वेट मॉडर्न की लिखी हुई पुस्तक उन्नति के शिखर, अध्याय 9, ज्ञान बढ़ाइए। अनपढ़ आदमी को हमेशा भारी असुविधा रहती है, चाहे किसी में कितनी ही सहज योग्यताएं क्यों ना हो, पर यदि वह अशिक्षित है तो वह हानि ही उठाता रहता है। केवल योग्यताओं का होना ही काफी नहीं, शिक्षा के द्वारा मानसिक अनुशासन प्राप्त करना भी बहुत आवश्यक है। आज जबकि अंधे, बहरे, लंगड़े एवं विकलांग भी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अनपढ़ व्यक्तियों को लज्जा आनी चाहिए। बहुत से युवक शिक्षा की उच्च सुविधाएं ना मिलने के कारण जो थोड़ी सुविधाएं मिली होती हैं उन्हें भी ठुकरा देते हैं। वे अपने सुधार, संस्कार व आत्म शिक्षण का यत्न ही नहीं करते। वर्ष पर वर्ष बीतते जाते हैं। जब वे अधेड़ आयु के होते हैं तब उन्हें पछताना पड़ता है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमें देखने को मिलता है कि पुरुष और स्त्रियाँ, विशेषतया 25 से 40 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति शिक्षा के अभाव के कारण छोटे मोटे कामों में पड़े सड़ रहे हैं। क्या अब भी वह अपनी उन्नति कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आज स्थान स्थान पर कितने स्कूल हैं जो पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा देते हैं। बहुत से रात्रि विद्यालय हैं, कई स्थानों पर भाषण और व्याख्यान होते हैं, नित्य नई पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, अनेकों लाइब्रेरियां खुली हुई हैं, अखबार व साप्ताहिक मासिक पत्रिकाएं छपती हैं। जो नर नारी अपने को शिक्षित करना चाहते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, वे इनसे अवश्य लाभ उठा सकते हैं। आपके ज्ञान को बढ़ाने के हजारों उपाय हैं, केवल तीव्र इच्छा की आवश्यकता है। जब आप इस बात के लिए पछताएं कि पहली आयु में आपने शिक्षा प्राप्त करने का अवसर खो दिया और अब आगे पढ़ने का अवसर ही कहाँ है, तब आप अपने आसपास दृष्टि दौड़ाइए। आप देखेंगे कि आपसे भी कम सुविधाएं होते हुए भी बहुत से लोग शिक्षा संबंधी उन्नति के लिए कठोर परिश्रम एवं प्रयत्न कर रहे हैं। यदि आप अपने आप को शिक्षित करना चाहते हैं तो सबसे प्रथम अटूट निश्चय हो, उत्साह हो कि आप सुशिक्षित व्यक्ति बनकर रहेंगे। आप संकल्प कीजिए कि आप अशिक्षित रहकर जीवन में तिरस्कार नहीं सह सकते। यदि आपको छोटी आयु में शिक्षा का अवसर नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं, अपने परिश्रम से आप अपनी विद्या की कमी को पूरा करके ही रहेंगे। जागे तभी सवेरा, ऐसा प्रण करते ही आप देखेंगे कि संसार परिवर्तित होना शुरू हो गया है। आप देखेंगे और चकित रह जाएंगे कि कितनी तेजी से आपकी मानसिक शक्तियों का विकास होना आरंभ हो गया है। प्रत्येक मनुष्य में आत्मविश्वास की तृष्णा स्वाभाविक है, वह तृष्णा दिव्य है। जब मानव विशाल बनना चाहता है तब वह अपनी योग्यता, ज्ञान, कार्यकुशलता और प्रवीणता को बढ़ाने की चेष्टा करता है। इसके लिए शिक्षा प्राप्ति एक अमोघ साधन है। मनुष्य बढ़ने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, जीवन का यही उद्देश्य है, यही तात्पर्य है। प्रतिदिन विकसित होने की, विशालतर होने की इच्छा, अपने अज्ञान को दूर करने की चाह स्वाभाविक तथा पवित्र है। सबसे उत्तम शिक्षित वे ही हैं जो सदा नियमित रूप से अध्ययन करते रहते हैं। वे प्रत्येक संभव स्रोत से ज्ञान को आत्मसात करते रहते हैं। जानकारी पाने के लिए किसी भी अवसर को वे हाथ से नहीं जाने देते। जीवन के साथ अध्ययन उनकी सतत प्रक्रिया है। अनेक शिक्षित युवक ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज में विधि पूर्वक शिक्षित युवकों से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिक उत्तम संस्कारों को ग्रहण कर लिया है। वे स्वभाव से ही हर बात को खुली आंखों से देखते हैं और सूक्ष्मता से उनकी बारीकियों को समझने का यत्न करते हैं। वे अपनी जेब में कोई ना कोई पुस्तक साथ रखते हैं और अवसर मिलते ही उसे पढ़ने लगते हैं। वे पत्र व्यवहार के द्वारा शिक्षा देने वाले विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। जो नवयुवक नए विचारों को तुरंत पकड़ लेते हैं, जो अपने से उत्तम मस्तिष्क वालों के संपर्क में आते रहते हैं, उनके व्यक्तित्व में न केवल आकर्षण आ जाता है अपितु एक सीमा तक उनकी मानसिक शक्ति का भी विकास हो जाता है। यह विश्व एक महान विश्वविद्यालय है। यहाँ प्रत्येक पदार्थ हमें एक नया पाठ पढ़ाता है, प्रत्येक वस्तु हमें एक नूतन रहस्य बतलाती है। कई लोग सदा विद्यार्थी ही बने रहते हैं। वे ज्ञान से अपने भंडार को निरंतर भरते रहते हैं। यह शक्ति इस बात पर आश्रित है कि मनुष्य के पास वह दृष्टि हो जो देख सके, वह मस्तिष्क हो जो उसके विषय में उचित विचार और चिंतन कर सके। थोड़े ही लोग अपनी दृष्टि का सदुपयोग करना जानते हैं। इस जग में घूमते हुए वे वस्तुओं पर सर्जरी नजर डालते हैं। वे किसी भी बात के रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करते। उनकी दृष्टि में जो चित्र आते हैं वे धुंधले और फीके होते हैं। उनमें सूक्ष्म विवरण का अभाव होता है। दृष्टि का यह कार्य नहीं कि वह मस्तिष्क को गलत खबरें दे। वह तो बाहर ही संसार में कभी नहीं घूमता। बाह्य विश्व की जानकारी के लिए उसे आँखों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। दूसरी इंद्रियां भी उसे संवाद पहुंचाती रहती हैं, किंतु उन सब में आँखें प्रमुख हैं। एक पिता अपने पुत्र को शिक्षित करने के लिए उसे अपरिचित गलियों में थोड़ी दूर जाने की आज्ञा देता था। जब पुत्र लौटता तो पिता उससे पूछता, तुमने कितनी वस्तुएं देखी? इसके अनंतर पिता अपने पुत्र को दुकानों पर, अजायब घरों में एवं सार्वजनिक स्थानों पर भेजने लगा। इस अभ्यास से पुत्र में वस्तुओं को सूक्ष्मता से देखने की आदत पड़ गई। अब वह केवल देखता ही ना था, देखकर उनका अध्ययन, मनन तथा स्मरण भी करता था। नया विद्यार्थी जब महान प्रकृतिवादी प्रोफेसर अगासिज के पास जाता था, तब अगासिज उसे एक मछली देकर कहता था, इसे एक घंटे तक देखो, फिर वर्णन करो कि तुमने क्या देखा। जब छात्र पूरा वर्णन समाप्त करता तो प्रोफेसर अगासिज उसे कहता, अभी तक वस्तुतः तुमने मछली को देखा ही नहीं, उसे तनिक अधिक देर तक देखो, फिर मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। इस प्रक्रिया को वह अनेक बार दोहराता था। इससे छात्र में सूक्ष्म निरीक्षण की योग्यता पैदा हो जाती थी। अगर हम जीवन में प्रश्न भरी दृष्टि से आगे बढ़े, हर एक वस्तु के सूक्ष्म स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते चलें, तो हमारी मानसिक संपन्नता महान हो सकती है। तब हमें ऐसी समझ बूझ प्राप्त हो सकती है जो धन ऐश्वर्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। रस्किन को मानसिक संपन्नता प्राप्त हुई थी। पक्षियों, कीड़ों, पशुओं, पेड़ों, नदियों, पहाड़ों के सूक्ष्म निरीक्षण से तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन से, पक्षियों के कलवर से तथा झरनों से मधुर संगीत से उसका मन अत्यंत धनी बना था। उसके मस्तिष्क में सहस्त्रों चित्रों की, भवनों की, मूर्तियों की प्रतिकृति मौजूद रहती थी। जगत के संपूर्ण सौंदर्य की संपत्ति उसके हृदय में सूक्ष्म रूप में विद्यमान थी, जिससे उसे सदा आनंद मिलता रहता था। हर एक वस्तु से उसे उपदेश प्राप्त होता था। प्रत्येक पदार्थ उससे अपना रहस्य कहता रहता था। उसका प्रश्न करने वाला मन प्रत्येक पदार्थ की गुप्त बात को पूछकर समझ लेता था। प्रत्येक प्रकार की सूक्ष्म जानकारी दूसरों से ग्रहण करके हृदय में धारण करने का स्वभाव अत्यंत मूल्यवान है। मनुष्य जितना अन्य मनुष्यों से दूर रहता है, मानव जाति से कट जाता है, उतना ही निर्बल तथा प्रभाव रहित हो जाता है। शक्ति का एक अनोखा स्रोत, सामर्थ्य की अपार विद्युत शक्ति उन दो मनुष्यों में परस्पर संचरण करती है जो आपस में मिलते और बातचीत करते हैं, बशर्ते कि उनका मन प्रश्न करता हो, जिज्ञासु हो। जब हम एक दूसरे से भेंट करते हैं तो लगातार परस्पर आदान प्रदान करते हैं। आज स्थिति यह है कि यदि व्यक्ति कुछ विशेष कार्य में सफल होना चाहता है तो उसे अपने आसपास के मानव समाज से निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ेगा। उसे इस व्यस्त विश्व की नाड़ी पर हाथ रखकर प्रति क्षण उसकी धड़कन को परखते रहना पड़ेगा। उसे अवश्य ही कि समाज का एक अंग बनना होगा, अन्यथा उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कमी रह जाएगी। एक ही पूर्ण ज्ञान से पुष्ट योग्यता उन 10 योग्यताओं से अच्छी है जो अज्ञान के कारण पंगु हैं। विद्या का अर्थ यह है कि मनुष्य ने जितना अध्ययन किया है उतना ज्ञान आत्मसात भी कर लिया है तथा वह ज्ञान मनुष्य का ही एक अंग बन गया है। अपनी आंतरिक शक्ति को व्यक्त करने की सामर्थ्य भी एक योग्यता है। मनुष्य जो कुछ जानता है उसे यदि वह प्रकट करता है तो यह एक बहुत बड़ा गुण है। यह गुण मनुष्य की कार्य कुशलता तथा सफलता की कसौटी है। जिन व्यक्तियों को अपनी अशिक्षा पर पछतावा है, वे यदि किसी अच्छे अध्यापक से शिक्षा ग्रहण करने लगें, तो वह साल भर में ही आश्चर्यजनक योग्यता उपलब्ध कर सकते हैं। जो मनुष्य स्वयं ही शिक्षा पाना चाहता है, उसके लिए खतरे की बात यही है कि कहीं वह असंबद्ध, व्यर्थ तथा निरुद्देश्य ही अध्ययन ना करता जाए। इस प्रकार के अध्ययन से आत्म सुधार के कार्यक्रम में कोई लाभ नहीं पहुंचता। अपने को ऊंचा उठाने के लिए किसी निश्चित कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति घर पर ही अध्ययन करके आगे बढ़ना चाहता है, उसे चाहिए कि किसी सुयोग्य, सुशिक्षित महानुभाव से उत्तम कार्यक्रम तैयार करा ले। यदि निर्देशक व्यक्ति इस कार्य को भली भांति जानता हो, तभी वह उत्तम मार्गदर्शन करके उस व्यक्ति को उन्नति पथ की ओर आगे बढ़ा सकता है। आत्म शिक्षण का एक विशेष उपयोग यह है कि आप अपने अध्ययन को अपने विशेष लाभ के अनुसार निश्चित कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज में इस प्रकार की सुविधा नहीं होती। जो मनुष्य अधेड़ अवस्था में शिक्षा पाना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने धंधे या पेशे से संबद्ध शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद वह अन्य विषयों का भी अध्ययन करके अपने ज्ञान को व्यापक बना सकता है। मानव अकेला ही अनेक विषयों का अध्ययन कर सकता है, जैसे इतिहास, साहित्य, अलंकार शास्त्र, चित्रकला, गणित तथा इन विषयों में स्वतंत्र अध्ययन करके भी वह उतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है जितना कि एक अध्यापक से पढ़कर प्राप्त हो सकता है। काम चलाने के लिए मनुष्य विदेशी भाषाओं का भी स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सकता है। कीमती जानकारी को प्रतिदिन संचित करते रहना चाहिए ताकि वह भविष्य के जीवन के लिए उपयोग में लाई जा सके। पुस्तकों के सतत अध्ययन से मनुष्य को महान कार्यों में प्रवृत्त होने की प्रेरणा व स्फूर्ति मिलती है, जिससे वह संसार में अपनी स्थिति को उन्नत करने में समर्थ हो सकता है। निरंतर अध्ययन मनुष्य के लिए बैंक में जमा रकम से भी अधिक उपयोगी हो सकता है। बहुत सी स्त्रियां कॉलेज में अध्ययन ना कर पाने के कारण ही आज पिछड़ी हुई हैं। पति की सीमित आय में वे अपने जीवन का विकास नहीं कर पाती। अध्ययन ना कर पाने के कारण वे इस योग्य नहीं होती कि कहीं नौकरी करके धन कमा सके। कॉलेज में मिलने वाली शिक्षा की तरह ही घर पर शिक्षा प्राप्त करना कोई कठिन काम नहीं है। जितने घंटे व्यक्ति घर पर एकाग्र मन से अध्ययन करता है, उतने घंटे कॉलेज में अध्ययन करे तो दोनों का परिणाम समान ही होगा। जो घर पर पढ़ना चाहते हैं, उनके समय की रक्षा की जिम्मेदारी घर के अन्य लोगों पर आती है। आपस की सलाह से घर में सायंकाल, विशेषतः सर्दियों में कुछ समय ऐसा निश्चित होना चाहिए जब सब लोग चुपचाप मन को एकाग्र करके अपने अपने अध्ययन में मग्न रहें। उस समय कोई ना बोले, कोई भी किसी के समय को नष्ट ना करे। हजारों घरों में जहां घर के सभी सदस्य एक दूसरे के हितैषी भी हैं, किसी के लिए भी पढ़ाई करना असंभव हो जाता है, क्योंकि वहां प्रायः सारा समय बातचीत में ही बीत जाता है। सभी एक दूसरे की एकाग्रता भंग करते रहते हैं तथा इसी में एक दूसरे का हित चिंतन समझते हैं। वे रोटी और मक्खन से आगे बढ़कर अन्य किसी भी उद्देश्य को सामने नहीं रख पाते। उनके घरों की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। शाम का समय नष्ट करने के लिए सबके सामने कई प्रलोभन होते हैं। ऐसे समय सबसे अलग होकर एकांत में बैठने तथा अध्ययन करने के लिए महत्वाकांक्षा एवं दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हास्य विनोद, गपशप, स्नेह का वातावरण मनुष्य को अपनी ओर बड़े वेग से खींचता है। ऐसे समय मन को एकाग्र करने के लिए आत्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अपने चित्त व मस्तिष्क को दृढ़ता एवं नियम क्रम पूर्वक किसी एक निश्चित विषय पर कुछ मिनटों के लिए भी एकाग्र करना बहुत लाभदायक होता है। इसका बहुत ही मूल्य है। इस स्वभाव के द्वारा व्यक्ति अपने फालतू समय का बहुमूल्य उपयोग कर सकता है। फालतू समय में हमारी उन्नति के अवसर छिपे हुए हैं। इस बात का ज्ञान प्राप्त करना ही बहुत लाभकारी होता है। जो मनुष्य लगातार उन्नति करने का यत्न करता है, उसकी ख्याति फैल जाती है। वह ख्याति भी बहुत लाभदायक होती है। इससे दूसरे लोग समझने लगते हैं कि यह व्यक्ति धुन का पक्का है, मेहनती है, नेक है। यह प्रसिद्धि भी एक प्रकार की पूंजी ही है। कई व्यक्ति अशिक्षा के कारण फालतू समय का उचित उपयोग नहीं करना जानते। वे अपने समय को व्यर्थ ही गवा देते हैं। जैसे बहुत से बालक अपने पैसों को व्यर्थ ही व्यय कर डालते हैं। वे नहीं जानते कि थोड़ा अध्ययन करते रहने से भी एक दिन भारी ज्ञान भंडार संचित हो जाता है, जो उन्नति के लिए नई पूंजी है। एक युवक को विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन का अवसर न मिला, शीघ्र ही उसे पैसा कमाने में जुट जाना पड़ा। उसने घर पर रहकर ही अध्ययन आरंभ किया और एक दिन इतना विद्वान हो गया कि उसे यूनिवर्सिटी ने सम्मानित सहित प्रोफेसर का पद दिया। विद्यालय, रात्रि विद्यालय, स्वतंत्र कक्षाएं और पत्राचार द्वारा पढ़ाने वाले अध्यापक आदि सभी हितकारी हैं। यदि व्यक्ति इनसे उचित लाभ उठा ले तो निश्चय ही अपनी उन्नति कर सकता है। ज्ञान का देवता उन व्यक्तियों के लिए अपने द्वार नहीं खोलता जो उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा नहीं रखते तथा उसे प्राप्त करने के लिए त्याग एवं बलिदान नहीं करते। यदि आप ज्ञान पाना चाहते हैं, तो आपको इसका उचित मूल्य चुकाना ही होगा।